नमस्कार भारत, 12 दिसंबर दिन मंगलवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। न्यूयॉर्क में चरमपंथी हमले की कोशिश, पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ा।
This was an attempted terrorist attack. Thank God the perpetrator did not achieve his ultimate goals.
यरूशलम पर इसराइल को यूरोपीय संघ ने ठेंगा दिखाया।
We will continue to respect the international consensus on Jerusalem until the final status of the holy city is resolved through direct negotiations.
गुजरात में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन।
ये लोग बोलते हैं कि डेवलप करा, विकास करियो, पर जहाँ पे डेवलप है वहीं पे ही डेवलप करते।
हमारे कॉर्पोरेट MLA सिर्फ वोट मांगने के लिए आते, तब हमारी पहचान होती, उसके बाद वो चले जाते हैं, ना सफाई देखते हैं ना गटर।
खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मुख्य बस टर्मिनल पर कल सुबह चरमपंथी हमले की कोशिश में एक बांग्लादेशी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध का नाम अकायद उल्लाह है और जिसकी उम्र 27 साल है। वो बांग्लादेशी आप्रवासी है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर डी ब्लासियो ने इस घटना के बाद कहा कि चरमपंथी नहीं जीतेंगे। कल न्यूयॉर्क में एक अंडरपास में हुए धमाके में 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। रूस ने कहा है कि उसने सीरिया से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। कल अचानक सीरिया के दौरे पर गए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सैनिकों को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। रूसी सैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, लगभग 2 सालों में रूसी फौज ने सीरियाई सैनिकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को शिकस्त दी है। इसे देखते हुए मैंने फैसला किया है कि रूसी सैनिकों का एक हिस्सा देश वापस लौट जाएगा। आप विजेता के रूप में घर लौट रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के पास। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं को गवाही देने के लिए बुलाया है। रसेल क्रुक्स, जेसिका लीड्स और समांथा हालवी ने ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें जबरन छुआ और उनका चुम्बन लिया। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने एक बार फिर इन आरोपों को खारिज किया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि इसराइल और फलिस्तीन के बीच जब तक अंतिम रूप से शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक उसके सदस्य यरूशलम को इसराइल की राजधानी नहीं मानेंगे। मोगेरिनी ने इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ये बात कही है। नेतन्याहू चाहते हैं कि यूरोपीय संघ भी इस मामले में अमरीकी रुख का समर्थन करे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की अर्जेंटीना में चल रही बैठक के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य को लेकर मतभेद सामने आए। चीन और यूरोपीय संघ ने जहां WTO को मजबूत बनाने पर जोर दिया, वहीं अमरीकी प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटलाइजर ने आरोप लगाया कि WTO अपने मिशन से भटक गया है। उन्होंने कहा,
We need to clarify our understanding of development.
हमें WTO को आगे बढ़ाने को लेकर अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा। हम ऐसी स्थिति नहीं झेल सकते जिसमें नए नियम केवल कुछ ही देशों पर लागू होते हों और दूसरों को इससे छूट मिल जाती है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति रॉबर्ट लाइटलाइजर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूक्रेन के एक जज ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल शाकाश्विली की नज़रबंदी की अपील की गई थी। शाकाश्विली पर देश को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप है। इसराइल ने कहा है कि हमास के रॉकेट हमले के जवाब में उसने गजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है। इस कार्रवाई में अभी तक दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को अंतरिक्ष यात्री पहले चांद पर भेजना चाहिए और फिर मंगल पर। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना रुतबा फिर से हासिल कर सकेगा। मिस्र के मोहम्मद सलाह को 2017 का BBC अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। लिवरपूल के लिए खेलने वाले 25 साल के सलाह ने कहा कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा है और BBC अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब पाकर वो बहुत खुश हैं। BBC समाचार।
ये बी बी सी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। न्यूयॉर्क सिटी में चरमपंथी हमले की एक कोशिश में कई लोग उस समय बाल बाल बच गए जब हमलावर उतना बड़ा धमाका नहीं कर पाया जितने बड़े धमाके की उसे उम्मीद थी। अधमरी हालत में मिले हमलावर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया जिसकी पहचान एक बांग्लादेशी के तौर पर हुई है। वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी की रिपोर्ट सुनिए।
न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के इलाके में न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी के बस टर्मिनल पर पीर की सुबह मसरूफ औकात में एक धमाका हुआ जिसके बाद पुलिस ने जख्मी हालत में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। न्यूयॉर्क में धमाके के बाद न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा है कि वो दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये चरमपंथी हमले की कोशिश थी। ये तो अच्छा हुआ कि साजिश करने वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस तेजी से हरकत में आई और स्थिति पर काबू पा लिया।
हिरासत में लिया जाने वाला मुश्तबा शख्स जख्मी था। हुकाम का कहना है कि चार अफराद जख्मी हुए हैं, ताहम किसी की जान खतरे में नहीं है। हुकाम के मुताबिक 27 साल मुश्तबा शख्स जिसका नाम अकायदुल्ला बताया गया है बंगाली है, जिसने धमाका खेज आला अपने जिस्म के साथ बांध रखा था। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अकायदुल्ला नामी शख्स जमीन पर पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर जख्मों के निशान हैं। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क पुलिस के कमिश्नर जेम्स ओनील ने कहा,
Responding units found an injured 27-year-old male. We've identified him as Akayedullah. He had burns and wounds to his body.
जवाबी कार्रवाई करने वाली टीम को 27 साल का एक आदमी घायल हालत में मिला। उसकी पहचान अकायदुल्लाह के तौर पर हुई है। वो जख्मी था, उसका शरीर थोड़ा झुलसा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि उसने अपने शरीर पर धमाका करने वाला उपकरण बांध रखा था।
बरतानवी खबर सा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेने की तस्दीक तो की है, लेकिन धमाके की नौयत के बारे में तफसीलात से आगाह नहीं किया। मकामी जराए ब्लाक के मुताबिक धमाके में पाइप बम इस्तेमाल किया गया जो पोर्ट अथॉरिटी के टर्मिनल के जेर जमीन गुजरगाह में फटा, और हिरासत में लिए गए शख्स से एक और पाइप बम बरामद भी किया गया। पोर्ट अथॉरिटी के हुकाम ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि इस बस टर्मिनल को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। पोर्ट अथॉरिटी पर धमाके के वक्त मौजूद एक मुसाफिर ने कहा कि सीढ़ियों पर मुसाफिरों के बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि हर शख्स खौफ का शिकार था और भाग रहा था। एक और विटनेस का कहना था,
Suddenly, I see the group of people, like 60 people running like nuts. And
मैंने देखा कि एकदम से 60 के करीब लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक औरत गिर गई, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि सब इतने खौफजदा थे। फिर एकदम से सब कुछ स्लो हो गया। पुलिस जगह पर पहुंच गई और फौज भी थी। साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। व्हाइट हाउस और मकामी ज़राए ब्लॉग के मुताबिक सदर ट्रंप को इस वाकये की तफसील से आगाह कर दिया गया है। इस मौके पर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो का कहना था,
This is New York. The reality is that we are a target by many.
ये न्यूयॉर्क है। सच तो ये है कि हम कई लोगों के निशाने पर हैं। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और आज़ादी के खिलाफ हैं। यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसकी वजह से हम निशाने पर आ जाते हैं। हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं।
ये वाकया एक उज़्बेक तारके वतन की तरफ से न्यूयॉर्क में साइकिल सवारों के लिए मखसूस गुजरगाह पर ट्रक चढ़ा देने के वाकये के 2 माह बाद हुआ जिसमें 8 अफराद हलाक हुए थे। सितंबर सन 2016 में भी एक शख्स ने घरेलू साख्ता बम से धमाका करके न्यूयॉर्क के चेल्सी डिस्ट्रिक्ट में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया था। इरम अब्बासी, बीबीसी, वाशिंगटन।
न्यूयॉर्क की इस खबर के बाद वो खबर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, वो खबर है यूरोपीय संघ का इसराइल से ये कहना कि यूरोपीय संघ इसराइल को, यरूशलम को इसराइल की राजधानी नहीं मानता है। इससे इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोशिशों को धक्का लगा है, जो चाहते थे कि यूरोपीय संघ अमरीका की तरह यरूशलम को इसराइल की राजधानी मान ले। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے روپ میں مانیتا دینے کا مسئلہ دنوں دن انتراشٹری استر پر الجھتا جا رہا ہے. پہلے عرب دیشوں نے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف آواز مکھر کی اور اب یوروپی سنگھ نے بھی ٹرمپ کے نرنے کو ٹھینگا دکھا دیا ہے. بیلجیم کی راجدھانی برسلز میں کل یوروپی سنگھ کی ودیش نیتی کی پرمکھ فیڈریکا موگرینی نے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی اور صاف کر دیا کہ سنگھ یروشلم پر ٹرمپ کے فیصلے سے قطعی سہمت نہیں ہے. موگرینی نے کہا کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ انتم روپ سے شانتی سمجھوتا نہیں ہو جاتا تب تک اس کے سدسیہ یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی نہیں مانیں گے.
یو نو ویئر دی یورپین یونین سٹینڈز. وی بیلیو دیٹ دی اونلی ریئلسٹک سولوشن ٹو دی کنفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ فلسطین از بیسڈ آن ٹو سٹیٹس.
آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر یوروپی سنگھ کا کیا رخ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ وواد کا حل دونوں دیش ہی مل کر نکال سکتے ہیں. ابھی یروشلم دونوں کی ساجھا راجدھانی ہے اور جب تک دونوں پکش اس مسئلے پر انتم سہمتی نہیں بنا لیتے تب تک یوروپی سنگھ یروشلم پر انتراشٹری سہمتی کو ہی مانیتا جاری رکھے گا. یوروپی سنگھ کی ودیش نیتی کی پرمکھ فیڈریکا موگرینی کے اس کڑک بیان کے بعد اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نتنیاہو بھی اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے وہی بات دہرائی جو وہ پہلے بھی کہہ چکے
ہیں. Peace is based on reality.
میں سمجھتا ہوں کہ راشٹرپتی ٹرمپ نے سبھی تتھیہ صاف صاف دنیا کے سامنے رکھے ہیں. شانتی کے لیے واستوکتا کو سمجھنا ضروری ہے. تتھیہ یہ ہے کہ یروشلم اسرائیل کی راجدھانی ہے. ہماری سنسد، ہماری سرکار، پردھان منتری کاریالے اور سپریم کورٹ بھی وہیں ہیں. اس سچائی کو سویکار کیے بنا شانتی استھاپت نہیں ہو سکتی. اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نتنیاہو اور یوروپی سنگھ کے بیانوں کے بیچ ترکی کے دورے پر گئے روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے بھی ٹرمپ کے فیصلے کو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ شانتی پرکریا کے لیے خطرہ بتایا. انکارا میں پریس کانفرنس میں پوتن نے کہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ روس اور ترکی یروشلم پر امریکی فیصلے کو صحیح نہیں مانتے، اور ہمارا ماننا ہے کہ اس سے مدھیہ پورو کے حالات سدھارنے میں مدد نہیں ملے گی اور استھتی اور بگڑے گی. یہ شانتی پرکریا کو پوری طرح ختم کر سکتا ہے. یہ تھے روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن کے شبد. پہلے عرب جگت اور اب یوروپی سنگھ. یروشلم پر ٹرمپ اپنے ویرودھیوں کے نشانے پر تو ہیں ہی. سعودی عرب اور روس جیسے ان کے قریبی سمجھے جانے والے دیش بھی اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے میں یروشلم اسرائیل کی ویاپک مانیتا پراپت راجدھانی بنے گا. یہ وواد نکٹ بھوشیہ میں تو سلجھتا نہیں دکھتا.
یروشلم پر اسرائیل کو یوروپی سنگھ نے ٹھینگا دکھایا. رپورٹ سنا رہے تھے دنیش اپریتی. اب بات نیپال کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیپال میں حال ہی میں سنسدیے چناؤ ہوئے تھے جن کے نتیجوں کی آدھیکارک گھوشنا ہونا ابھی باقی ہے، لیکن جتنے بھی نتیجے ابھی تک آئے ہیں ان سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ستارڑھ نیپالی کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا ہے اور وام گٹھ بندھن ستا سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے. کیا یہ نتیجے سمبھاوت تھے یا چونکانے والے ہیں؟ میرے سہیوگی کلدیپ مشر نے ورشٹھ پترکار آنند سوروپ ورما سے یہی جاننا چاہا.
جب دونوں پارٹیوں کی ایکتا ہوئی تو یہ طے ہو گیا کہ اب ان کو دو تہائی بہمت مل ہی جائے گا، لیکن نیپالی کانگریس اتنی بری طرح پٹ جائے گی اس کا انمان شاید لوگوں کو نہیں رہا ہوگا. گھٹنا جو ہوئی ہے وہ پوری گھٹنا اپرتیاشت ہے، اس میں کوئی سندیہ نہیں، کیونکہ نیپال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وامپنتھی پارٹیاں مل کر کے چناؤ لڑ رہی ہیں اور یہ پہلا چناؤ ہے سمویدھان بننے کے بعد.
کے پی اولی جن کے پردھان منتری بننے کے اب زیادہ آثار ہیں، ایک سمے جن کے بارے میں کھل کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ بھارت کے اچھے دوست ہیں، کیا اب بھی ایسا کہا جا سکتا ہے؟
اب ایسا نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ خود بھارت کی نیتی ہے. اگر بھارت نے آرتھک ناکے بندی نہیں لاگو کی ہوتی، جس کو بھارت ابھی بھی نہیں مانتا ہے کہ اس نے لاگو کی، اس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں نے ڈر کی وجہ سے اپنے ٹرک روک دیے تھے وہاں. 20 ستمبر کو سمویدھان لاگو ہوا، 21 ستمبر کو سارے چیک پوسٹوں پر بھارت کے سرکشا ادھیکاریوں نے ٹرکوں کو روک دیا اور کہا کہ آپ اپنے مالک سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے کہ اگر نیپال کی سیما کے اندر ان کے کوئی چھتی پہنچائی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ان کی ہوگی. ایسا کہہ کر کے ٹرکوں کو رکوا دیا، جس کی وجہ سے، اور یہ ناکے بندی کافی دنوں تک چلی، جس کی وجہ سے وہاں جنتا بہت پریشان ہوئی. اور بھارت سرکار نے یہ موقع دیا کہ اولی جی कोई स्टैंड ऐसा लें ताकि जनता को राहत मिल सके। अगर उन्होंने नेपाल ने चीन के साथ कुछ समझौता किया कुछ सामान के लिए, वह एक सिंबॉलिक था, क्योंकि नेपाल का कोई भी शासक ये जानेगा कि भारत को चीन रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन वहां की जनता की जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, उन्हें देखते हुए केपी ओली को वह कदम उठाना पड़ा।
भारत के लिए और भारत सरकार के लिए इन नतीजों के क्या हासिल हैं?
देखिए, भारत सरकार अनौपचारिक अनऑफिशियली आप कहिए कि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दोनों पार्टियों के बीच एकता ना हो, क्योंकि इनको भी पता था कि अगर इन दोनों पार्टियों की एकता हो गई तो नेपाली कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी और वहां एक वामपंथी सरकार बन जाएगी जिस पर इनका अंकुश नहीं रह पाएगा। तो इनकी तो पूरी कोशिश थी कि वह एकता ही ना हो। अब एकता जब हो गई, ये सरकार जो बनने जा रही है अब कुछ दिनों में वामपंथी, तो भारत सरकार के अंदर एक पैनिक है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद लगातार नेपाल उनके एजेंडा में रहा, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि नेपाल में वे ताकतें जो राजतंत्र के समर्थन में थीं, जो चाहती थीं कि एक बार फिर हिंदू राष्ट्र नेपाल बन जाए और नेपाल का राजा हिंदू हृदय सम्राट बने, जो कि यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के लोग कहा करते थे, तो वह स्थिति अब मौजूदा भारत सरकार के लिए बहुत दूर की हो गई है।
क्या आसार हैं कि जो नया वाम मोर्चा बना है यूएमएल और माओवादी सेंटर पार्टियों का, ये मोर्चा कितना स्थायी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और उस स्थिति में नेपाल की स्थिरता कितनी सुरक्षित रह सकती है?
ये आपकी शंका बहुत वाजिब है, लेकिन जिस तरह से एमाले को जनता ने समर्थन दिया है उसके पीछे बहुत सारी बातें निहित हैं, जिसमें एक ये भी है कि देखो हमें भारत की दादागिरी नहीं पसंद है। उन्होंने जिस तरह का एक राष्ट्रवाद दिखाया नेपाली जनता को नाकेबंदी के समय, उसको नेपाली जनता ने पसंद किया। नेपाली जनता अपनी सॉवरेनिटी को एसर्ट कर रही है इस मतदान के जरिए।
नेपाल में सत्ता परिवर्तन की तैयारी भारत के संदर्भ में इसके मायने बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। नमस्कार भारत में आगे सुनेंगे आप। भारत में इन दिनों राजनीति का कुरुक्षेत्र बने गुजरात से कुछ युवाओं की आवाज, जो बताएंगे आपको चुनाव और राजनीति के बीच वो खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं। लेकिन पहले बात उन खबरों की जो आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। मेरे सहयोगी दिनेश उप्रेती के हाथों में कई अखबार हैं।
जी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की शादी की खबर तस्वीर समेत लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने तस्वीर के ऊपर हेडलाइन लगाई है, विराट अनुष्का'ज बिग टस्कन वेडिंग। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, अ मैच इन टस्कनी। अमर उजाला की सुर्खी है, मिलान में दो सितारों का मिलन। इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के दखल के प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी को अधिक सयानापन दिखाना चाहिए और हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। हिंदू ने इसी खबर को पहले पन्ने पर छापा है और उसकी हेडलाइन है, मोदी माफ़ी मांगे। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में चल रही बैठक को इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक तीनों देशों ने चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया है। वहीं भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने आपसी विश्वास बढ़ाने की वकालत की है। इंडियन एक्सप्रेस ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के बाद से देश के सिर्फ 250-300 परिवारों यानी कि घरानों के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। द हिंदू ने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है, हेडलाइन है, राहुल गांधी इरा बिगिंस फॉर कांग्रेस। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल टेलीविजन चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कंडोम के विज्ञापन न दिखाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मेडिकल जर्नल के शोध को पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें दावा किया गया है कि 2015 में देश में 1,60,00,000 गर्भपात हुए हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 7,00,000 का आंकड़ा जो है सरकार जारी करती रही है अब तक, कि हर साल 7,00,000 गर्भपात होते हैं और ये आंकड़ा उससे तकरीबन 22 गुना ज़्यादा है।
बहुत फ़र्क है दोनों में
जी। दैनिक भास्कर ने एक दिलचस्प खबर लगाई है। दैनिक भास्कर के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम की चंडीगढ़ में सुरक्षा में खामी का मुद्दा सामने आया है। खबर के मुताबिक टीम इंडिया जब कल चंडीगढ़ पहुंची तो पुलिस ने उसे सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि बोर्ड ने पिछले मैचों के दौरान ली गई सुरक्षा के एवज में 82,00,000 रुपये नहीं चुकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिल्ली की 5 स्कूली फुटबॉलरों के समुद्र में डूबने की खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। ये कहा जा रहा है कि ये लड़कियां सेल्फी लेने के चक्कर में जो है वो समुद्र में गिर गई थी। खबर के मुताबिक 4 छात्राओं को बचा लिया गया है, जबकि 1 की मौत हो गई है।
मेरे सहयोगी दिनेश उप्रेती बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 दिसंबर को हो चुका है। आज 12 दिसंबर है, 2 दिन बाद यानी 14 दिसंबर को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। 14 दिसंबर को जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें अहमदाबाद भी शामिल है। अहमदाबाद गुजरात का वो शहर है जहां मुसलमानों की आबादी राज्य के बाकी शहरों से कहीं ज़्यादा है। इस चुनाव में न जाने कितने मुस्लिम युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद कुछ ऐसे ही युवाओं से मिले।
पहली दफा वोट डालने जा रही हैं आप, तो कैसा महसूस करते हैं? आपकी तरफ आ रहा है, आप बताइए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप?
मुहारी माहिर।
अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं पहली दफा वोट डालने आ रहे हैं?
बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
तो वोट डालने का मतलब क्या समझते हैं आप?
वहाँ पे जो हमारा एरिया वो गृह मंत्री का है, जो गुजरात के गृह मंत्री उनका एरिया में से आता हूँ। वहाँ पे मुस्लिम विस्तार में जरा भी डेवलपमेंट है ही नहीं। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम विस्तार है लगभग 50% वहाँ पर पीने का पानी नहीं आता है। रोड टैंकर से पानी देना पड़ता है और वहाँ पर गटर लाइन तो है ही नहीं।
नाम बताइए।
पठान शहनाज।
शहनाज, अच्छा पहली दफा वोट डालने आ रहे हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं?
फीलिंग लाइक के कुछ पावर आई है हाथ में। और ये लोग बोलते हैं कि डेवलप करा, विकास करियो, पर जहाँ पे डेवलप है वहीं पे ही डेवलप कर करते हैं। जैसे कि ब्रिज है तो ब्रिज ही बना करते हैं। कहने को बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, पर जो ओरिजिनल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं।
आप भी पहली दफ़ा वोट डालने जा रहे हैं, अपना नाम सही?
मेरा नाम सैयद नदीम हुसैन है, पहली दफ़ा वोट देने जा रहा हूँ। सो बहुत मैं एक अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ इस बार सरकार को चेंज करने जाऊँ, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ नहीं है और 22 साल से जो वादे किए जा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि विकास 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 नथिंग पॉसिबल, क्योंकि आज तक 22 सालों में कोई भी कॉलेज नहीं खोली, नहीं कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खोली, यानी कुछ एजुकेशन में कुछ हुआ ही नहीं है।
काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई अब दंगे हो गए, 2002 में हुए थे, अब तो बहुत दिन गुजर चुके हैं, अब गुजरात में एक तरह से कम्युनल हार्मनी है, अब हम आगे देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे?
हम मुसलमान हैं सर, हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि हमको पीस चाहिए, तो भूलने के लिए ऑफकोर्स हम तैयार हैं। लेकिन सर, जैसे ही कुछ भी सेंसिटिव माहौल बनता है तो सबसे पहले वो यादें पुरानी ताज़ा हो जाती है, क्योंकि यू कैन से हिस्ट्री कैन नेवर बी डिलीटेड, सो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री सर।
आप बताइए ना।
पठान आयशा,
आपका क्या विचार है?
अभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में तो सब लोग समझते ही हैं। अपने बैंक में भी कहीं पे जाओ तो कोई मतलब हमारे पहले फॉर्म नहीं लेते, कोई ध्यान नहीं देता, 3-4 बार उन लोग को बोलना पड़ता है। और हिंदू कोई भी पहले जाए तो उनका पहले सुन लेते।
मुस्लिम एरिया में इसलिए एकता, सबसे पहले तो एकता ही नहीं है, जो मुस्लिम एरिया वहाँ पे एक दूसरे के बीच में एकता ही नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और गुजराती एरिया में वहाँ पे एकता होती है, अगर कुछ भी होता है छोटा सा भी तो वो लोग सब मिलके सरकार के खिलाफ होते हैं और सब उनका जो डेवलपमेंट का जो भी है सब वो लोग हक लेते हैं। पर मुस्लिम एरिया में अपना चलता है, ऐसे चला लेते वो लोग कि अपना तो काम बनता है, अपना काम कर लो, ऐसा ही।
आप चाहेंगे कि मुस्लिम एरिया से निकल के गैर मुस्लिम एरिया में रहें?
नहीं, हम अपने एरिया में रहेंगे और हम अपने एरिया में विकास चाहते हैं।
आप बोलना चाह रही? अपना नाम बता दीजिए।
मेरा नाम है अंसारी तस्वीर।
क्या कहेंगे?
पहली बात तो हमारा प्रशासन सो रहा है, उसको जगाने की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे को। हमारे कॉरपोरेट MLA सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने आते हैं तब हमारी पहचान होती है, उसके बाद वो चले जाते हैं, ना सफाई देखते हैं ना गटर। गटर भी अगर टूटी हुई है तो अगर उसके लिए बनवाने के लिए एप्लीकेशन भी देने तो उसके लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं हमारे को, तब जाके कहीं कुछ काम होता है हमारे।
मुस्लिम इलाके पूरी हिंदुस्तान में, सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पिछले हुए होते हैं, ऐसा क्यों?
मुस्लिम के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता, आज भी मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव है। कितनी सोसाइटी में अगर कितने फ्लैट्स हैं, अगर बुक करवाना है तो वहाँ पे हिंदुओं को दिया जाता है, मुस्लिमों को वहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसा क्यों नहीं किया?
जैसे प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का हवाला दिया उन्होंने, औरंगजेब का हवाला दिया, मुगल का हवाला दिया, तो ऐसा क्यों, किस कारण कर रहे हैं? नाम बता दो, अपना नाम।
मेरा नाम शेख आसिफा है। ये उनको मतलब उनकी पार्टी जो अभी चल मतलब है वो आगे भी उनको यही लानी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि उनको अपना जो होता है वो बनाए रखना है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, फिर तो वो आगे आएंगे।
अगर तुमको वोट चाहिए, कुछ करना है तो तुमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो ये मतलब स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है कि आपको अपने पार्टी के लिए कुछ करके करना है, तो ये इस तरीके से पास्ट का कुछ भी रेफरेंस लेके आपको इस तरीके से उकसाएंगे कि आप ये वो देखिए, आप इस बस ये स्टंट
पॉलिटिकल स्टंट है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन ये पोलराइज करने की भी कोशिश है।
प्रधानमंत्री के भाषणों में इस तरह की चीज़ें आ रही है कि वो पाकिस्तान का हवाला दे रहे हो, और जब राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने औरंगजेब का शासन मुबारक को, तो इस तरीके से वो हिंदू मतों का तुष्टिकरण करेंगे। कभी हाल फिलहाल में गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल जो इन्होंने पटेलों का अलग अनामत मांगने के लिए पूरी अलग पटेल की एकता हो गई, और उनके वोट शायद नहीं भी पड़ेंगे उनके अंदर, तो भाजपा के अंदर, तो उसके लिए वो लोग ये चाहते हैं कि मतों का तुष्टिकरण करें, क्योंकि मुस्लिम 9% है, तो उनके वोट से कुछ उन लोग को ऐसा लगता नहीं कि उनके वोट कुछ इफेक्ट करेंगे इतने, पर उनके जो हिंदू है जो उनके वोट अगर उनके साथ होगा तो फिर से वो लोग एक बार फिर सरकार बनाने में आसानी होगी उनको, इसलिए वो मतों का तुष्टिकरण करने की कोशिश की जा रही है।
अपनी अपनी नज़र, अपना अपना नज़रिया। ये थे अहमदाबाद के कुछ मुस्लिम युवा जो 14 दिसंबर को पहली बार वोट डालेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत साल 2021 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में होने वाले 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई ने अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी दी। ये मीटिंग सोमवार को रखी गई थी। ऐसा पहली बार होगा जब बैक टू बैक आईसीसी के दोनों बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन भारत में किया जाएगा। इससे पहले भी 1987, 1996 और 2011 में भारत 50 ओवर के वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। 2011 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत ने अपनी मेजबानी में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया था। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये दूसरा मौका था जब भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। बीसीसीआई ने सोमवार को इस शर्त पर राजस्थान क्रिकेट संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी इसके संचालन से दूर रहेंगे। दरअसल आरसीए को बीसीसीआई ने मई 2014 में ललित मोदी के दोबारा इसका अध्यक्ष चुने जाने के बाद निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद से राजस्थान क्रिकेट संघ का कामकाज बीसीसीआई देख रहा है। आरसीए ने इस निलंबन के खिलाफ अपील की थी, जिसमें बोर्ड ने कहा था कि वह सभी निलंबित मामलों को वापस ले और बीसीसीआई को किसी अन्य नए मामलों में शामिल ना करे।
खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मुख्य बस टर्मिनल पर कल सुबह चरमपंथी हमले की कोशिश में एक बांग्लादेशी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। रूस ने कहा है कि उसने सीरिया से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। कल अचानक सीरिया के दौरे पर गए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सैनिकों को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। अमरीकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं को गवाही के लिए बुलाया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन के बीच जब तक अंतिम रूप से शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक उसके सदस्य यरूशलम को इसराइल की राजधानी नहीं मानेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की अर्जेंटीना में चल रही बैठक में चीन और यूरोपीय संघ ने जहां WTO को मजबूत बनाने पर जोर दिया है, वहीं अमरीका ने आरोप लगाया है कि WTO अपने मिशन से भटक गया है। यूक्रेन के एक जज ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली की नजरबंदी की अपील की गई थी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे थे शाकिर आलम। नमस्कार भारत में आज इतना ही। सुनना न भूलें दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे।